नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। नोएडा के फार्म हाउस में होने वाली रेव पार्टी में बिग बॉस के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि इन पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। इसके साथ ही इन पार्टियों में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। आरोप है कि एल्विश यादव इन पार्टियों के लिए सांपों के जहर का इंतजाम करवाता था। वो इस तरह की पार्टी में शामिल होता था जहां विदेशी लड़कियां शामिल होती थीं और सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। इस रेव पार्टी का खुलासा पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद किया था। इस मामले में फिलहाल एल्विश यादव सहित 6 लोगों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और IPC की धारा 120B के तहत FIR दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों की पहचान राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ के रूप में हुई है। वहीं एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कहा कि अगर ये साबित हो गया कि महुआ मोइत्रा से एथिक्स कमेटी ने कोई व्यक्तिगत सवाल पूछा था तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। निशिकांत दुबे ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लेने का आरोप लगाया था। वो अपना बयान देने के लिए गुरुवार को समिति के सामने पेश हुईं। इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि जांच के दौरान उनसे पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे गए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में महुआ के देश विदेश के हवाई जहाज, होटल व गाड़ी के खर्च देने की बात कही है। एथिक्स कमिटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट व होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की वो याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 से सुनवाई कर रही एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर बहाल करने का अनुरोध करने वाले वाद के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कहा, मामला खारिज किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IIT की एक छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाए जाने की घटना के बाद बृहस्पतिवार की सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने देर रात धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। IIT के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के वादे के बावजूद छात्र धरना प्रदर्शन बंद करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि देर रात IIT के निदेशक और पुलिस प्रशासन के साथ चली लंबी बैठक के बाद छात्र छात्राओं ने लगभग 15 घंटे से चल रहा विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार देर रात समाप्त कर दिया। छात्रों ने बताया कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT BHU परिसर के बीच 4 दीवारी बनाई जाएगी। नोएडा पुलिस ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी झोला छाप डॉक्टर को शुक्रवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के दौरान आरोपी घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 40 वर्ष है और वो शहर के फेज 1 पुलिस थाना क्षेत्र में एक क्लिनिक चलाता है। उन्होंने बताया कि आरोपी बृहस्पतिवार की दोपहर को बच्ची को बहला फुसला कर अपनी क्लिनिक ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने बताया कि आरोपी और लड़की दोनों पड़ोस में रहते हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, जांच दलों को सेक्टर 10 के एक पार्क में स्थित खाली इमारत में आरोपी झोला छाप डॉक्टर के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम जब उसे हिरासत में लेने पहुंची तब आरोपी ने उन पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्यवाही में वो घायल हो गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हमास के साथ युद्ध कर रहे इसराइल को $14.5 अरब की सैन्य सहायता मुहैया कराए जाने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। ये मंजूरी हमास के साथ इस युद्ध में इसराइल के प्रति अमेरिका के व्यापक समर्थन को दर्शाती है, लेकिन इसके कारण सदन के नए स्पीकर माइक जॉनसन का दलगत रुख भी देखने को मिला, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सीधी चुनौती बन गया। जॉनसन ने तय नियमों से परे जाते हुए ऐसे रिपब्लिकन पैकेज की वकालत की जिसमें आपात सहायता देने के लिए अन्य सरकारी खर्चों में कमी करने की बात की गई है। इसने सदन में रिपब्लिकन पार्टी के नए रूढ़िवादी नेतृत्व को स्थापित किया, लेकिन जिस विधेयक को आमतौर पर दोनों दलों का समर्थन मिलने की संभावना थी उसे लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद बंट गए। बाइडन ने कहा है कि वो इस विधेयक को लेकर वीटो का इस्तेमाल करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।